नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के उपसभापति के रूप में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए श्री हरिवंश को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सांसदों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में आयोजित एक समारोह में अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित संयुक्त माध्यमिक स्तरीय परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों को सम्मानित कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया। अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी के संयोजक एवं पूर्व सांसद ताकाम संजोय ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और भारत के परिसीमन आयोग से अनुरोध किया है कि अरुणाचल प्रदेश के परिसीमन के आधार पर लोकसभा सीटों में 33% महिला आरक्षण को अधिक महत्व दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख फुटबॉल रेफरी सांगम कायांग को आई लीग 3 में रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो आगामी 27 अप्रैल से मणिपुर के इम्फाल में शुरू होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज डर्बन में T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी और आज अहमदाबाद में IPL मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा को संबोधित करते हुए श्री हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये श्री हरिवंश पर सदन के गहरे विश्वास और संस्था में उनके बहुमूल्य अनुभव को दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा है कि लगातार तीसरी बार चुना जाना सदन द्वारा उनके अनुभव, समावेशी दृष्टिकोण और गरिमामय कौशल की स्वीकृति है। श्री हरिवंश के पत्रकारिता के शानदार करियर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उच्च मानकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और प्रभावशालिता लेखन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने पत्रकारिता के दिनों में श्री हरिवंश द्वारा लिखित हमारा सांसद कैसा हो नामक स्तंभ श्रृंखला के माध्यम से किए गए उनके अग्रणी कार्यों को रेखांकित भी किया गया। इस अनुभव के महत्व पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि दोनों सदनों के नए सांसद संसदीय आचरण, गरिमा और जिम्मेदारियों पर श्री हरिवंश की अंतर्दृष्टि से बहुत कुछ सीख सकते हैं। राज्य विधानसभाओं, विधान परिषदों और उनके पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से सहायता प्रदान करने में श्री हरिवंश के प्रयासों को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की वैश्विक स्तर पर सशक्त छवि बनाने में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में उनकी सक्रिय भूमिका की भी प्रशंसा की। श्री मोदी ने 21वीं सदी में दूसरी तिमाही में सदन की महत्वपूर्ण भूमिका पर विश्वास व्यक्त कर उन्हें पीठासीन अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर बल देते हुए अपने संबोधन का समापन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है और कल रात ही 1 बजे तक चर्चा चली। उन्होंने कहा है कि संशोधन से संबंधित जो भ्रम फैलाए गए हैं उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब देकर समाधान कर दिया गया है और सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का हल निकाला गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जहां भी जानकारियों का अभाव था वहां सभी सदस्यों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, जिससे विरोध के मुद्दों को स्पष्ट किया जा सके। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि महिला आरक्षण का मुद्दा लगभग 4 दशकों से राजनीतिक बहसों का विषय रहा और अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकसभा में जल्द ही मतदान होने की उम्मीद है और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सोच विचार करके पूरी संवेदनशीलता के साथ महिला आरक्षण संशोधन के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी ADCC जिसके संयोजक पूर्व सांसद ताकाम संजय है ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और भारत के परिसीमन आयोग से अनुरोध किया है कि अरुणाचल प्रदेश के परिसीमन के आधार के रूप में रणनीतिक महत्व, वैश्विक भौगोलिक स्थिति और विधानसभा एवं लोकसभा सीटों में 33% महिला आरक्षण को अधिक महत्व दिया जाए। हाल ही में गठित इस समिति ने संविधान में संशोधन की मांग करते हुए 5 लोकसभा सीटें, 2 राज्यसभा सीटें और वर्तमान 60 विधानसभा सीटों को बरकरार 90 करने का प्रस्ताव रखा है। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रस्तावित 5 संसदीय क्षेत्रों को नाम 5 प्रमुख नदियों कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तिराप के नाम पर रखा जाए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में आयोजित एक समारोह में अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड APSSB द्वारा आयोजित संयुक्त माध्यमिक स्तरीय परीक्षा CSLE 2025 के 461 सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया और उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस परीक्षा में कुल 47,132 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जो 26 विभागों के ग्रुप सी एवं ग्रुप डी पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिससे चयन प्रक्रिया अत्यंत प्रतिस्पर्धी रही। मुख्यमंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनकी सफलता का श्रेय उनकी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता को दिया है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख फुटबॉल रेफरी संगम कायांग को आई लीग 3 में रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो आगामी 27 अप्रैल से मणिपुर के इम्फाल में शुरू होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने कुल 8 रेफरी और 8 सहायक रेफरी चुने हैं, जिनमें संगम कायांग का भी नाम शामिल है। वे अरुणाचल प्रदेश के पहले राष्ट्रीय रेफरी है और ईस्ट कमिंग जिले के चायांग ताजू सर्किल के कायांग गांव के निवासी है। उन्हें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में रेफरी के रूप में काफी अनुभव प्राप्त है। प्रख्यात लेखिका, पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मामांग दाई ने पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में लिटरेरी लुमिनरीज लेक्चर सीरीज में भाग लिया। उन्होंने कहानी कहने की परंपरा को जीवंत परंपरा की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि किस प्रकार आदिवासी कथाएं सांस्कृतिक स्मृति और सामुदायिक मूल्यों को संरक्षित करती है। अरुणाचल प्रदेश की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराएं विषय पर बोलते हुए उन्होंने मौखिक परंपराओं, आदिवासी पहचान और प्राकृतिक परिवेश में आपसी संबंधों को विस्तार से समझाया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलने के लिए तैयार है। इस सीरीज का पहला मैच आज डर्बन के किंग्समेट में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। अगला मैच भी रविवार को इसी मैदान पर खेला जाना है, जबकि तीसरा और चौथा मैच इस महीने की 22 और 25 तारीख को जोहान्सबर्ग के वॉन्डर्स में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी मैच 27 अप्रैल को पेनोनी में विलोमूर पार्क में खेला जाएगा। वही सीरीज एक बहुत ही अहम समय पर खेला जा रहा है, क्योंकि ICC महिला T20 विश्व कप 2026 शुरू होने में अब 2 ही महीने बाकी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमें इस सीरीज का इस्तेमाल जून में होने वाले इस वैश्विक टूर्नामेंट की तैयारी के तौर पर करेंगी। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 60 विकेट से हराया था। नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के धार और खरगोन में किसानों के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनके सामने केरला के फसल में अमानक बीज और रोपे हुए सभी भारी नुकसान का मामला रखा है, जिस पर श्री शिवराज सिंह ने इसे किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार मानते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद मामले में तेज कार्रवाई करते हुए और धार जिले में मानवर थाने में संबंधित कंपनी पर FIR दर्ज किया गया है। दुनियाभर में भारत की AI क्षमताओं को आगे बढ़ाने की निरंतर प्रतिबद्धता के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया AI मिशन के स्टेशन F पेरिस और HES पेरिस के साथ साझेदारी में विकसित अंतर्राष्ट्रीय पहल इंडिया AI स्टार्टअप ग्लोबल एक्सेलरेशन प्रोग्राम के दूसरे बैच के लिए 10 अत्याधुनिक भारतीय AI स्टार्टअप के चयन की घोषणा की गई है। इंडियन AI स्टार्टअप ग्लोबल एक्सेलरेशन प्रोग्राम की शुरुआत इंडियन AI मिशन, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने स्टार्टअप फाइनेंसिंग पिलर के तहत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप कैंपस स्टेशन F और यूरोप के प्रमुख बिजनेस स्कूलों में से एक HEC परिसर में सहयोग से किया जाएगा। प्रत्येक बैच में 10 चयनित भारतीय AI स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए आवश्यक संसाधन, विशेषज्ञता और रणनीतिक संपर्क प्रदान किए जाते हैं। ये कार्यक्रम भारत की राष्ट्रीय AI रणनीति के अनुरूप है, जो सीमा पार ज्ञान आदान प्रदान, उन्नत उद्यमशीलता, परितंत्रों और जुड़ाव और वैश्विक बाजार एकीकरण पर जोर देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाकर नवाचार को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक निवेश को आकर्षित करके ये पहल AI आधारित समाधानों में अग्रणी बनने के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।